होली का दिन आया तो होली के दिन जो लकड़ियां जलाते हैं ना, वो लकड़ियां लगाई थी, और लगाई तो थोड़ी देर बाद जो है मोहल्ले के और दूसरे लोग आए, जिसमें मुसलमान भी थे, सभी थे, सरदार भी, मुसलमान भी, हिंदू भी, सबने कहा कि बाउंड्री आप ये हटा लो, ये लकड़ियां यहाँ जलने नहीं देंगे, पर हो सकता है यही आपके घरों को जला देंगी।
Hello and welcome back to the Biblio Babu show. It's good to be back. About time, almost 3 months से मैंने कोई एपिसोड अपलोड नहीं किया. Multiple reasons. Firstly, so as you know, right, I was planning to change the dynamics of the show, the format of the show. So finally, you know, the show has a new name. Next episode onwards, the show will be called The Impression Series. Notifications will be out on social media very soon. And the YouTube channel also has the same name. So now your Biblio Babu show is known as The Impression Series. So that's one news right there. Us revamping mein thoda time lag gaya mere ko. So for today's episode, I'm touching a very sensitive topic. Not a sensitive topic, but I'm touching a story. Jo kai log hain humme se jinhone dekha nahi hai, but our folks, our elderly people, हमारे बुजुर्गों ने वो चीज देखी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्टीशन ऑफ द कंट्री. सो टुडे आई स्पीक टू यू नो वन ऑफ माय फ्रेंड्स ग्रैंडफादर, एंड ही टेल्स अस कि उनका पार्टीशन का एक्सपीरियंस कैसा है. ही टेल्स अस स्टोरीज दैट पीपल जनरली डोंट नो अबाउट. वेरी शॉर्ट एंड स्वीट इंटरव्यू, बिकॉज बाबा ज्यादा टाइम बैठ नहीं पाते, बट उन्होंने फिर भी बहुत कुछ शेयर किया जो शेयर वर्दी है, शेयर करना चाहिए, राइट. सो हेयर इट इज द स्टोरी ऑफ द पार्टीशन ऑफ द कंट्री बाय समवन हु वाज पार्ट ऑफ द पार्टीशन, राइट. सो लेट्स गेट राइट इनटू इट. आई विल सी यू.
हेलो एंड वेलकम टू द बिब्लियो बाबू शो. आई एम योर होस्ट अमनदीप सिंह. किताबें सब लोग पढ़ते हैं. वेल, मैं भी बहुत पढ़ता हूँ, दैट्स वाई आई एम द बिब्लियोफाइल. किताबों के साथ साथ मुझे कहानियां बहुत पसंद है जो हमारी लाइफ में रोज कहीं ना कहीं छोटी ना छोटी होती रहती हैं. एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि यार चलो मैं अपनी स्टोरीज शेयर करता हूं, और इसी के साथ फॉर्म में आया द बिब्लियो बाबू शो. एंड आई थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू दिस शो एंड ज्वाइनिंग मी ऑन द जर्नी ऑफ लिसनिंग एंड शेयरिंग अदर स्टोरीज. अगर आप भी शो पे आना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे जाइए, अमन एस सिद्धू मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, या फेसबुक पे मुझे मैसेज कीजिए अमनदीप सिंह, एंड सेंड मी एन ईमेल ऑन feedback.amansiddhu@gmail.com, एंड आई वुड लव टू होस्ट यू एंड लिसन टू यू एंड शेयर योर स्टोरी. इसके साथ आइए सुनते हैं आज की कहानी.
अमन नमस्ते, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो. थैंक यू ये इंटरव्यू के लिए. एंड अभी बस मैं आपसे डिस्कस करना है कि आपकी जर्नी कैसी रही, कैसा रहा आपका, यू नो, वहां से यहाँ आने का पूरा वो माहौल कैसा था उस टाइम का. सो ओवर टू यू.
देखिए, ये सबसे पहले तो ये है कि जब हमने नाइन्थ का इम्तहान दिया उस समय 15 साल का था. तो जैसे हम लास्ट पेपर देकर आए तो लोग जो है शान के ऊपर अपने चाकू छुरियां तेज करवा रहे थे, कोई तलवारें ठीक करा रहे थे, तो ये काम हो रहा था. तो हमने डर गए, घर पे जाके पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है. कहने लगा ये जो है हिंदू मुस्लिम के अलग हो रहे हैं, पार्टीशन हो रहा है, इस वजह से ये सारा काम हो रहा है. ठीक है, फिर वो जो है थोड़ा उस समय सहम गए थे. उसके बाद जो है होली का दिन आया तो होली के दिन जो लकड़ियाँ जलाते हैं ना, वो लकड़ियाँ लगाई थी, और लगाई तो थोड़ी देर बाद जो है मोहल्ले के और दूसरे लोग आए, जिसमें मुसलमान भी थे, सभी थे, सरदार भी, मुसलमान भी, हिंदू भी, सबने कहा कि बाउंड्री आप ये हटा लो, ये लकड़ियाँ यहाँ जलने नहीं देंगे, पर हो सकता है यही आपके घरों को जला देंगी. तो हमने वो गली उठा ली लकड़ियाँ, क्योंकि हमारा घर मुखिया था उस समय, तो सारा काम वहीं से होता था, ऐसे होली का दहन वगैरह का. तो ये तो रहा. फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद ये हुआ कि जो है वो राइट्स चालू हो गए। अब राइट्स में उस रात हमें इतना डरावना हो गया कि वो जिंदगी में दोबारा आएगी नहीं वो रात। उस रात जो है हम बगल में अपने एक जो है कुर्ता और एक पजामा बगल में डालकर और धर्मशाला में चले गए। सब भाई बहन और जो भी मोहल्ले वाले लड़के थे छोटे वो सबको वहाँ धर्मशाला में भेज दिया, क्योंकि बराबर का जो मोहल्ला था वो तांगे वालों का था पर वो सब मुसलमान थे तांगे वाले। वो भी डरे हुए थे और हम भी डरे हुए थे। तो वो जो है चले गए अपने तांगे लगा के बारामूला साइड तरफ और हम जो है वहीं थे। तो हमारे को जो है वो रहा पर दिन में तो घर पे रहते और रात में वहां जाकर धर्मशाला में सो जाते थे। वो हमारे घर की उसकी दीवार और हमारे घर की दीवार धर्मशाला की दीवार और हमारे घर की दीवार एक ही थी। तो हम कभी आन जाते थे कभी चल के जाते थे और वहां रहते रात वहां रहते थे। फिर इस तरह से करते करते हमारा इम्तिहान के रिजल्ट आया। रिजल्ट के बाद जो है 14-15 जुलाई से स्कूल बंद हो जाते हैं और छुट्टियां हो जाती हैं 2 महीने की। तो 2 महीने की छुट्टियों में हम जो है कहले कि आप तो सामान लेके जाओ यहाँ से। तो मेरे बड़े एक ब्रदर सबसे बड़े ब्रदर तो पहले ही जा चुके थे, वो जयपुर आ चुके थे और उससे छोटे वाले ब्रदर जो है वो अजमेर चले गए थे। उसके बाद जो ब्रदर थे वो CMA ऑफिस में काम करते थे, वो और फादर वहीं रहे। बाकी हमें भी भेज दिया, मैं और हमसे छोटे जितने भी भाई बहन थे मदर के साथ ट्रेन से इधर आ गए हिसार। यहाँ पर रहना शुरू, यहाँ हिसार में हमारे कजिन ब्रदर रहते थे। तो उन कजिन के पास जो है हम रहे और वहाँ जो है हमने पार्टीशन होने का ऐलान सुना, जिसमें माउंटबेटन और नेहरू पटेल वगैरह सब थे वहाँ पर। उनका आवाज से सुनी और जो है हम फिर वहीं रह गए और फिर हिसार छोड़ के जयपुर आ गए। जयपुर में हमारी बुआ जी का घर था, वहाँ का रहना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर घर रह रहे थे वहीं पर ही। तो वहाँ से आने के बाद जो है अब हमारे जो सबसे बड़े भाई जो है डॉक्टर थे और वो प्राइवेट प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने सबको बुला लिया, वहाँ चले गए। तो मैं जो है सबसे जो भाई बहन जो थे उस समय के मैं ही सबसे बड़ा था, मेरे से बड़े एक और ब्रदर थे। तो मुझे तो एडमिशन साइंस में लेना था तो मेरे को वहाँ दिया नहीं एडमिशन जयपुर में। और दूसरे ब्रदर ने सब्जेक्ट बदल लिया, उन्होंने कॉमर्स ले ली मेरे से जो बड़े वाले थे। अब वो कॉमर्स में पढ़ते रहे, वो जयपुर रह गए और मैं जो है यहाँ मेरठ में आ गए। क्योंकि मेरठ में जो है वो हमारे जो भाई CMA ऑफिस में थे वो वहाँ से रावलपिंडी से ट्रांसफर होके उनको ट्रांसफर जो है इधर कर दिया था मेरठ। और माय फादर भी उस समय लाइट बैंक में जॉब करते थे, तो वो लाइट बैंक की वजह से उनकी भी सर्विसेज ट्रांसफर करती थी। फादर ने हमारे को कहा, फादर बोले कि मुझे ट्रांसफर करना है तो मुझे दिल्ली देना, अमृतसर नहीं जाना मुझे। उन दिनों अमृतसर का हाल बहुत खराब था, फ्लड आए हुए थे और बहुत ही भीड़ थी, लोगों की मार काट चल रही थी। अमृतसर दे रहे थे, उन्होंने कहा मुझे अमृतसर नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा तो अच्छा हम तो दे नहीं सकते आपको दिल्ली, तो हमारे पिताजी ने उसको छोड़ के वो रिटायरमेंट सीख कर लिया। वो एक बैंक ऐसा था जहाँ पे के रिटायरमेंट देते थे और पेंशन कर दी, और उस पेंशन से थोड़ी बहुत गुजारा था। फिर हम सब जो है फादर जो है दिल्ली से वहाँ आ गए जयपुर। जयपुर में सबकी एजुकेशन चल रही थी छोटे भाई बहनों की, और फिर जो है हमारे जो सीएमए ऑफिस में ब्रदर थे उनका जो है वो ट्रांसफर रावलपिंडी से मेरठ हो गया था। मेरठ में कोई मकान नहीं दे रहे थे, तो फिर जो इन्होंने सीएमए ऑफिस के थ्रू मकान अलॉट कराया। बड़ी मुश्किल से अलॉट कराया क्योंकि कोई खोलता नहीं था मकान अपने, और तो बताते नहीं थे क्योंकि प्राइवेट मकान थे। तो खैर जैसे तैसे करके हमने एक मकान मिला। उस मकान में फिर जो है हम लोग मेरठ शिफ्ट हो गए जयपुर से, और फादर जो है वो भी वहीं आ गए। फादर जो है यंग थी, उनकी एज ज्यादा नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने प्राइवेट जॉब कर लिया एक फैक्ट्री में। वो ऑयल एक्सप्रेस बनाया करते थे, तो वहां जो है उन्होंने नौकरी की थोड़े दिन, फिर उनको पैरालिसिस हो गया। तो फिर जो है ब्रदर जो जयपुर में डॉक्टर थे वो वहां से लेकर उनको जयपुर आ गए। इस तरह से हम सब शिफ्टिंग हो गया, जयपुर आ गए। मैंने मीनवाइल बीएससी कर लिया था और एडमिशन ले रहा था एमएससी, तो उस समय कोई ले नहीं रहे थे एडमिशन में। वहां से जो है फिर जैसे तैसे करके सागर यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी किया, और जो है वापस जब जयपुर आए तो फिर राजस्थान सर्विसेज में अप्लाई किया। राजस्थान में वो कहते थे कि जो हमारे पास किए हुए स्टूडेंट्स हैं उनको ही पहले प्रेफर करेंगे, आपको बाद में होगा। खैर काफ़ी दो तीन पीएससी फेस करने के बाद मुझे फिर जो है गवर्नमेंट जॉब मिल गई लेक्चरर की। तब से हमने स्टार्ट किया अपने जब कैरियर।
तो बाबा पीछे से कहाँ से थे आप, कौन से पाकिस्तान में कौन से स्टेट में कौन सी सिटी में थे?
हम तो रावलपिंडी सदर में रहते थे, और घर के पास ही जो है एक सनातन धर्म मिडिल स्कूल था। उस स्कूल में जो है सब हिंदू सरदार टीचर्स थे, तो सनातन धर्म स्कूल में वो हमारे घर के नज़दीक ही था। वो चार मंजिल का था बिल्डिंग, उसमें जो है आठ तक क्लासें लगती थी, पहली दूसरी और तीसरी। पहली दूसरी तो सबसे नीचे, फिर बीच की मंजिल में तीसरी चौथी और पांचवी, और उससे ऊपर वाली मंजिल में सिक्स सेवन्थ और एट्थ, और बीच बीच में जो साइड के कमरे थे उसमें प्रिंसिपल का हेडमास्टर का कमरा था। तो इस तरह से वहाँ है हमारी एजुकेशन भी ये थी कि पहली क्लास से हमने उर्दू पढ़ना शुरू किया, उर्दू के कायदे से पढ़ाई शुरू की, अलिफ बे पेज वैस ये पढ़ते थे। फिर उसके बाद तीसरी क्लास से हमें हिंदी की ऑप्शन मिला कि हिंदी भी आप सीख सकते हो और हिंदी भी पढ़ सकते हो। और सरदार लड़कों को कहा कि तुम गुरमुखी का भी ज्ञान ले सकते हो। वैसे गाँव में हिंदी और गुरमुखी दोनों पढ़ाई जाती थी। फिर सातवीं क्लास में पहुँचते पहुँचते हमने संस्कृत भी ले ली, वहाँ संस्कृत भी थी, अरबी फारसी ये भी पढ़ाते थे। फिर उसके बाद जब एट्थ पास कर लिया तो वो स्कूल तो छोड़ना पड़ा, फिर एक हाई स्कूल में एडमिशन लिया। वो पास ही था, थोड़ी दूर था घर से, और उसमें जो है सब थे, उसमें जो है या तो साइंस के साथ आप साइंस संस्कृत ले सकते थे, उर्दू ले सकते थे, उर्दू तो थी, हमने हिस्ट्री ज्योग्राफी का इम्तहान जो है उर्दू में ही दिया, और जो है उसके बाद हिस्ट्री वगैरह भी सब उर्दू में ही पढ़ी थी। उस समय हमने आर्यन पीरियड पढ़ा, फिर उसका मिडिल पीरियड पढ़ा, और फिर ब्रिटिशर्स वाली हिस्ट्री पढ़ी। तो एक हिस्ट्री में तो एक किताब में तो ये अंग्रेजों के जो थे ना लॉर्ड जितने भी थे इंडिया से जो जाते थे, उन्होंने जो है राज किया था तो उनकी हिस्ट्री बताई जाती थी। आर्यन पीरियड था, और बीच में जो है मुगल पीरियड, चंद्रगुप्त पीरियड, इन सब की पढ़ाई हुई उसमें, ये तो हिस्ट्री में रहा। फिर हमने जो है वो साइंस जो हाई स्कूल था उसमें हमने साइंस संस्कृत ली, तो साइंस के साथ आप अरबी भी ले सकते थे, फारसी भी ले सकते थे, उर्दू भी ले सकते थे, हिंदी भी ले सकते थे। तो हमें कहा, बताया गया कि साइंस संस्कृत है, साइंस संस्कृत ले लो, तो हमने साइंस संस्कृत ले ली। ड्राइंग नहीं ली, ड्राइंग वाले टीचर से डर लगता था क्योंकि वो बड़ा हार्ड टास्क मास्टर था, मतलब उससे डर लगता था, तो उसने ड्राइंग ली नहीं। और फिर ड्राइंग वाला टीचर कहता था कि जिसको थोड़ी बहुत ड्राइंग आती है उसको लूंगा, और जिसको नहीं आती उसको नहीं लेंगे। इस तरह से ड्राइंग तो हमने ली नहीं, बाकी जो है साइंस संस्कृत की ली। तो साइंस संस्कृत में हमने टेंथ जो है पास की संस्कृत में और साइंस की। फिर हाई स्कूल का इम्तहान इस बीच वहाँ पार्टीशन हो गया, तो वहाँ से हम हिसार में पढ़े, तो उसमें वहाँ भी जो है हिसार में कजिन के यहाँ रुक के हमने जो है वो स्कूल में पढ़ाई की, टेम्परेरी एडमिशन लिया वहाँ पर, तो वहाँ से पास किया। अब वहाँ पर जो अच्छे स्टूडेंट्स मिशन थे हम, तो फिर उसके बाद जो है ये था कि भाई कॉलेज में जाना है, तो सारी फैमिली तो उस समय मेरठ पढ़ रहे थे, मैं और जो ब्रदर्स सिस्टर छोटे थे, तो मुझे भी जाना था वापस मेरठ। तो वहाँ पर ये था मेरठ कॉलेज में एडमिशन, वो कहने लगी जी आपको तब मिलेगा अगर आपके फर्स्ट डिवीजन पास करके आएंगे। तो मेरा मैंने एश्योरेंस दिया कि मेरा आएगा फर्स्ट डिवीजन। तो पंजाब ईस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी बन चुकी थी उस समय, और वो शिमला में थी उस समय। तो वहाँ हमने जो है वहाँ से जो है एक साल से ईस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी का इम्तहान दिया, और फर्स्ट डिवीजन आया मेरा, और उसी के बेसिस पे मेरठ कॉलेज में उसी साल एडमिशन हो गया, वरना मेरा एक साल वेस्ट हो रहा था। तो उसी साल मैंने मैट्रिक का इम्तहान दिया और उसी साल फर्स्ट ईयर ज्वाइन कर ली। तो इस तरह से मेरा साल सेव हो गया, फिर मैंने बीएससी मेरठ से किया। फिर एडमिशन नहीं मिला तो एमएससी करने सागर यूनिवर्सिटी चले गए।
तो बाबा आप जब, जैसे अभी आपने बताया कि आप जब नाइन्थ में थे तब उधर पार्टीशन की बात शुरू हो गई थी, तो ये तो 1947 का मामला है, बट उसके पहले लाइक वो 1940 या उसके पहले का जो टाइम था जब से आप वहाँ पे रहे हैं पार्टीशन की बात होने के पहले से, तो तब भी वहाँ पे इत्तफाक था लोगों में, या उस टाइम से ही ये पॉलिटिकल शुरू हो गया था मसला के देश बंटेगा या अलग अलग रहेंगे हिंदू मुसलमान ऐसा?
उसका होता था पर वो अखबारों में या इसमें आता था, हमारे को इस चीज की कोई नॉलेज नहीं थी। ये तो बाद में जो है जुलाई 47 में ये सब चालू हुआ मामला, और जो है उसी समय जो है वो बाजार बंद हो जाया करते थे, फिर जो है दुकानें लूट लेते थे, हिंदुओं की दुकानें, सरदारों की दुकानें, ये लूट लेते थे। फिर वो मिलिट्री रूल आ गया, मिलिट्री रूल में भी जो बलोच रेजिमेंट थी मुसलमानों की, तो वो चलाकी खेलती थी, ये मुसलमानों से कह देती थी तुम दुकान को लूट लो हिंदुओं की, और फिर जो है वो उनको भगा देते थे, ऐसे करते रहते। फिर जब सेंट्रल गवर्नमेंट वाली आई आर्मी, तो उसने जो है मार्शल लॉ लगाया, और फिर जो है तो उसी में चलता रहा। फिर थोड़ी थोड़ी ढील मिली तो फिर नाइट कर्फ्यू चलता था, तो नाइट कर्फ्यू में जो है वो दिन भर तो लोग काम करते थे, जाना आना बाजारों का था, लेकिन रात को कर्फ्यू रहता था।
तो आप जब वहां से इधर आए, इंडिया आए, आपने बताया कि आप हिसार में सेट हुए, थोड़ा परिवार जो है वो जयपुर में रुक गया, तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसा फेस करना पड़ा था कि आप उस तरफ से आए हैं तो थोड़ा कुछ डिस्क्रिमिनेशन ऐसा हुआ हो, या थोड़ा होता ना, क्योंकि आप बहुत, ये हमारे जैसे पंजाब में भी बहुत हुआ कि जो वहाँ के पंजाब से जो शिफ्ट होके इस तरफ आए, जैसे आपने अमृतसर बताया, राइट, अमृतसर में बहुत सारी दुनिया वहाँ से शिफ्ट होके आई, तो उनके साथ वही बर्ताव होता था कि तुम लोग उधर से आए हो, तुम अभी भी तुम साइड में रहो, तो ऐसा कुछ आपको महसूस हुआ कि जब आप इधर आए इस तरफ हिसार जयपुर साइड?
नहीं, वो ऐसा तो वो क्योंकि हम कैंप में तो रहे नहीं, क्योंकि घर घर थे हमारे रिश्तेदारों के, तो हम घरों में ही एडजस्ट हो गए, तो घरों में भी जो है हमारे बोलने का तरीका फर्क था। मेरठ में जो है लोग कहते थे अरे ये तो रिफ्यूजी है, ये तो रिफ्यूजी आए हुए हैं वहाँ के, इनसे बर्ताव, हम फ्रेंडशिप करने में भी लोग कतराते थे, और बोली से फौरन पहचान लेते थे ये तो पंजाबी है, तो हम दोस्ती जो है करते थे पंजाबी लड़कों से ही करते थे मेरठ तक।
एक एक लास्ट सवाल बाबा, उसके बाद आप ज्यादा बैठ नहीं पाएंगे तो मैं आपको ज्यादा होल्ड नहीं करूंगा। कुछ कुछ परिवार आपका वहां रह गया था जो वहां पे थे, बाद में उनकी पीढ़ी आगे चली, या सब आ गए थे इधर, या कुछ ऐसे दोस्त जिनसे आप अभी भी टच में हैं जो उधर हैं?
नहीं, कुछ जो है उन्होंने धर्म परिवर्तन भी कर लिया, उसने कहा जी हमें तो अपना घर छोड़ना नहीं है, अपनी जायदाद नहीं छोड़ दी है, तो वो उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, हिंदू से मुसलमान बन गए, और वो वहीं रहना शुरू कर दिया। उनकी क्या तकदीर बनी ये हमें नहीं मालूम, बाकी को हार्ट जहाँ के मास्टर तारा सिंह थे अकाली दल के, उनके गांव को बहुत इन्होंने नुकसान पहुंचाया, और जो इधर के पेशावर और इस तरफ के लोग आए थे तो काफले के काफले जाते थे, कोई काफले तो लूट लिए जाते थे, उसमें वो अपना सामान लेके जाते थे, खुश रह जाते थे। हम भी जिस ट्रेन से आए हैं वो बस एक तरह से कहना चाहिए आखिरी ट्रेन थी, उसमें भी जो है मुसलमान छांट छांट के सामान ले लेते थे कि इस बक्से को खोलो देखो इसमें क्या है, अगर माल है पैसा है और जेवर है तो बक्सा एक बक्सा उतार लेते थे। फिर अगर ट्रेन उसमें डब्बों में इतनी भीड़ हुआ करती थी कि आदमी का सांस घुटता था, कई बुढ़े आदमी जो है वो मर भी गए तो उनकी लाश जो है वहीं सड़क उतार के प्लेटफॉर्म पर उतार के ट्रेन चल दी, क्योंकि लोग उन समय जो है आपाधापी चली हुई थी कि कोई आदमी रह गया तो रह गया, जो चढ़ गया ट्रेन में तो चढ़ गया, कई बच्चे बिछड़ गए माँ बाप से, कोई बहनें अलग हो गई, कुछ हस्बैंड वाइफ अलग हो गए, ऐसा चला उन दिन। बाद में तो कहीं कहीं मिल भी गए लेकिन काफी जो है मुसीबत झेलनी पड़ी।
तो ये इंडिया में उस टाइम पे जो पार्टीशन के टाइम पे जो सिटीजन्स वहां से आ रहे थे, तो उनके लिए रेफ्यूजी कैंप कहाँ कहाँ पे बने हुए थे?
रेफ्यूजी कैंप जो आते ही तो सब फिरोजपुर में थे, आगे इधर जगह जगह बने हुए थे, बठिंडा जाकर इधर कम बड़े इम्पोर्टेंट सिटीज में थे, जो पंजाब साइड से आए थे लायलपुर सरगोधा इस साइड वाले तो जो है इधर की तरफ आ गए थे बाकी जो सिंध के रास्ते से आए थे सिंधी वो अलग जो है जयपुर में कैंप में बन गया उनका वो अलग गया रिफ्यूजी कैंप और सरदार लोग थे वो कई जो है उधर के रास्ते से आए लाहौर वाले रास्ते तो मेरठ में सेटल हो गए तो अलग अलग रास्तों से आए हैं और अलग ही नजदीक जाके बस के किनारे पर जाए
तो ये जो जो भी हम लोग अभी टीवी पे टेलीविजन पे मूवीज में देखते हैं कि उस टाइम पे सफर के दौरान जो भी मारकाट हुई हुजूम के हुजूम जो थे यू नो मार दिए जाते थे या ट्रेनों को आग लगा दिया तो ये सब सच है या एक ओवर दिखाया है मतलब एग्जैजरेट
नहीं है बाकी जो फादर और ब्रदर जो है ना वो उनको जो है जब ट्रांसफर हुआ तो इनको टिकट मिला था तो फादर तो बैंक से थे बैंक की सर्विस में थे और जो ब्रदर हमारे वो कंट्रोलर सीएमए ऑफिस में थे तो इनको तो टिकट मिला था भाई एयर जो है ट्रेवल करके आप चले जाओ इंडिया और फादर को जो है वो टिकट मिला नहीं था क्योंकि तो गवर्नमेंट जॉब तो में तो थे नहीं तो उन्होंने नाम का अदला बदली कर ली फादर ने जो है बेटे का नाम लिखाया और बेटे ने बाप का नाम लिखाया इस तरह से वो आए अमृतसर उतरे अमृतसर से फिर इधर भरतपुर होते हुए जो है जयपुर आए तो भरतपुर मेरठ वो अमृतसर में तो मारकाट चली रही थी उन्होंने बक्से फेंक दिए सामान अपने कंधे पर रख के पानी पार किया जगह जगह पानी जो बह रहा था वो वहां से छोड़ने के बाद भरतपुर के रास्ते आए तो भरतपुर में जो इसका रिवर्स था भरतपुर में तो जो है उनका देख के कपड़े उतार के देखते थे कि हिंदू है मुसलमान है क्या है और जनेऊ जो है वो डाल देते थे गले में सरदारों का तो पता लग जाता था पगड़ी बांधी हुई है दाढ़ी बड़ी हुई है लेकिन हिंदुओं का पता नहीं लगता था तो उनको जनेऊ पहना दिए थे आते थे तो ऐसे जो है वहाँ भरतपुर के रास्ते में भी ये हुई तो मतलब एक तरह से वहां का बदला इधर भरतपुर में काफी लिया अमृतसर में लिया
ठीक है बाबा बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करके है ना मैं बातें तो बहुत करनी है आपसे बट टाइम ज्यादा आप मैं ज्यादा आपको रोकना नहीं चाहता तो दोबारा एक बार फिर मौका मिला मैं जरूर आपसे यू नो बात करूंगा और थोड़ी सी जर्नी और आपकी सुनूंगा है ना
धन्यवाद
थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन I certainly hope you like today's episode. और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया इसे दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एपिसोड को डाउनलोड करके बार बार सुनना ना भूलें बिकॉज आई एम श्योर यू वुड हैव गॉट सम नगेट सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वेल मुझे बहुत मजा आया आप अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी ईमेल पे feedback.amansidhu@gmail.com एंड नॉट ओनली दैट आई ऑल्सो इन्वाइट यू ऑन द बिब्लियो बाबू शो इंस्टाग्राम पे अमन एस सिद्धू मेरा हैंडल है मुझे मैसेज कीजिए मुझे फेसबुक पे मैसेज कीजिए अमनदीप सिंह मेरा फेसबुक आईडी है और इसके साथ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विद अ न्यू स्टोरी विद अ न्यू पर्सपेक्टिव तब तक कीप लिसनिंग